یا علی مدد. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، مولا کی نورانی تائید کی بارش سب کے اوپر برسے، سب کو ہمت دے، یاری دے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے، اور اس کے پاک دین میں جو اسرار ہیں، جو سیکرٹس ہیں، جو حقائق ہیں یعنی ریئلٹیز، ان کو سمجھنے کی مولا توفیق دے. تو آج قرآن کی ایک بہت ہی اہم آیت ہے، اور اس پر شیعہ اسلام کی در حقیقت بنیاد ہے، اور اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہر ایک مسلمان نے اپنی اپنی دانش کے مطابق کوشش کی ہے، اور ہمارے اماموں نے بزرگان دین کے ذریعے سے ہم کو جو ہدایات دی ہے، ان ہدایات میں یعنی بزرگان کی دین کی کتابوں میں کس طرح اس کی تشریح ہے، میں اس کو یہاں مختصر بریفلی بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اس کا سمجھنا بہت ہی امپورٹنٹ ہے. تو آیت جو ہے وہ اس طرح ہے، آپ نے کئی مرتبہ اس کو سنا بھی ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو اس کے لفظی معنی یہ ہے کہ خدا فرماتا ہے اليوم یعنی آج کے دن اکمل تو میں نے کامل کیا. ٹوڈے آئی پرفیکٹڈ یور ریلیجن. وہ اتمم تو اور میں نے پورا کیا نعمتی میری نعمت کو، میرے فیورز کو. اینڈ آئی کمپلیٹڈ مائی فیورز. ورضیت اینڈ آئی ایم پلیزڈ اور میں راضی ہوں. لکم الاسلام دینا تمہارے دین کا نام اسلام رکھنے سے میں راضی ہوں، یعنی تمہاری جو دین ہے اس کا نام اسلام ہوگا یا اسلام ہے، اور یہ نام رکھنے سے خداوند علی اللہ فرماتے ہیں کہ میں خوش ہوں. تو سب سے پہلے اس کے بیک گراؤنڈ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ کون سا دن تھا کہ جس میں خدا نے اپنے دین کو کامل کیا اور اپنی نعمت پوری کر دی، اور وہ کون سا ایسا بابرکت دن تھا کہ جس میں خدا نے مسلمانوں کے دین کا نام اسلام رکھا اور اس اسلام نام رکھنے سے خوش ہو گیا. تو عزیز بہنوں اور بھائیوں، تو اس کا بیک گراؤنڈ یعنی اس کا تاریخی پس منظر تو کیا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آخری حج کو پورا کر کے اس کے رائٹس، اس کی جو जिसको मनासिक कहते हैं, राइट्स एंड रिचुअल्स, हज के जो कुछ करने थे उनको पूरा करके पैगंबर मक्के से मदीना वापस आ रहे थे। तो रास्ते में खुदा ने ये बहुत ही मशहूर आयत जो हम अपनी दुआ में पढ़ते हैं वो नाजिल कर दी। और आयत ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैक मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लगत रिसालतह। ऐ रसूल, पहुंचा दो वो मैसेज जो तुम्हारे खुदा की तरफ से तुझे आया है, नाजिल हुआ है। अगर तूने ये मैसेज, ये पैगाम, ये रिसालत नहीं पहुंचाया तो गोया तूने बाकी जो कुछ भी काम किया है वो न करने के बराबर है। इट इज लाइक नल एंड वॉइड। ओ मैसेंजर, कन्वे द मैसेज विच यू हैव रिसीव फ्रॉम योर लॉर्ड टू द पीपल। इफ यू डिडंट कन्वे दिस पर्टिकुलर मैसेज, दिस मीन्स दैट वट एवर स्ट्रगल यू हैव डन इन ऑर्डर टू कन्वे द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम is nothing, becomes null and void without conveying this particular message. तो इसके अंदर आप देखते हैं कि एक बहुत बड़ा मैसेज था, खास मैसेज था, और पैगंबर को इसलिए बहुत ही एम्फेसिस के साथ फरमाया जा रहा है कि इसके अंदर एक और आयत, इसके अंदर उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। वो आयत ये है, उसको आयई वलायत कहते हैं। ये आयई वलायत जब नाजिल हो गई, इन्नमा वलीयुकुमुल्लाहु वरसूलुहु वल्लज़ीन आमनु والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون। तो खुदा फरमाता है, indeed your wali is Allah and his prophet, his messenger, and those mu'minins who establish their prayers and they give zakat while they are in ruku। To khuda farmata hai, ay mu'mino, tumhara dost, tumhara wali Allah hai और अल्लाह का रसूल है, और मोमिनीन में से वो हस्तियां हैं जो नमाज को कायम रखते हैं और रुकू में होने की हालत में जकात देते हैं। रुकू में होने की हालत में जकात देते हैं। तो इसमें खुदा यानी इसमें वली के तीन कैटेगरीज हुए हैं। एक तो खुदा वली है मोमिनीन का और मोमिनात का, दूसरा वली पैगंबर है, और तीसरा वली वो हजरात हैं जो नमाज को कायम करते हैं यानी दावती हक देते हैं और रुकू की सूरत में जकात देते हैं, ये रुकू की हालत में जकात देना इसकी भी एक हिस्ट्री है। तो ये हिस्ट्री विद इन हिस्ट्री जो है, ये तीन आयतें आपस में इंटर कनेक्टेड है। तो लोगों ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, ऐ रसूली खुदा, ये खुदा के वली होने का तो मुझे हमें इल्म हुआ, पैगंबर के वली होने का भी इल्म हुआ, ये जो तीसरा वली है वो कौन है, वो वली जो नमाज को कायम करते हैं और रुकू की हालत में जकात देते हैं। अब देखते हैं इस आयत का ताल्लुक इस तरह है कि जिस तरह कुरान में आई इताअत है, अति उल्लाह व अति उर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, यहाँ पर भी खुदा की शिनाख्त है, रसूल की शिनाख्त है, लेकिन उलिल अम्र की जाहिरी शिनाख्त नहीं है। इस जाहिरी शिनाख्त के लिए फिर कुरान और हदीस में देखना होगा कि वो कौन से हजरात हैं जो उलुल अमर के मर्तबे पर हैं, जिनको खुदा ने और पैगंबर ने उलुल अमर बनाया है। तो इसी तरह ये आयत भी है, यहाँ खुदा का वली होना मालूम है, पैगंबर का वली होना मालूम है, लेकिन जो तीसरी कैटेगरी है वली होने की, उसका जाहिर तौर पर मालूम नहीं, लेकिन आयत के अंदर एक इशारा है। जाहिरी इशारा यह है कि वो हजरात हैं कि जो रुकू की सूरत में जकात देते हैं। तो रुकू की सूरत में जकात देना जो है वो एक तारीखी इंसिडेंट ये है कि मौलाना मुर्तजा अली एक मर्तबा नमाज पढ़ रहे थे, नमाज ही की सूरत में थे, मौला रुकू की हालत में थे, और उस वक्त एक साइल ने, एक बेगर ने कुछ मांगा कि शेई अल्लाह, खुदा के लिए मुझे कोई चीज दे दो। तो उस वक्त कहते हैं कि मौलाना मुर्तजा अली के हाथ में एक रिंग थी, अंगूठी थी, तो मौलाना इशारे से उसको इशारा किया अपनी उंगली से कि वो मौला की मुबारक उंगली से वो रिंग यानी अंगूठी निकाल कर ले जाए। तो साहिल अंगूठी निकाल कर ले गया, उसके बाद ये आयत नाजिल हुई। तो इसका मतलब ये है कि जो तीसरी कैटेगरी जो है वली होने की, वो वही उलिल अमर हैं कि जो खुदा के दीन में जो अहकाम हैं, जो अवामिर हैं, जो नवाही हैं, जो काम करने के हैं, जो न करने के हैं, उनकी जो तालीम देते हैं, वही हजरात जो हैं वो उनके वली हैं। तो किस्सा मुख्तसर यह है कि खुदा तक डायरेक्ट किसी का एक्सेस नहीं है, पैगंबर जिस्मानी तौर पर दुनिया में नहीं है, दुनिया से चले गए हैं, और इंसानी आमाल के ऊपर जो गवाह हैं, जो हाजिर और नाजिर हैं, जो शहीद के तौर पर दुनिया में हैं गवाह के तौर पर, वो हजरात हैं जो वली हैं, यानी वो हजरात जो नमाज को कायम रखते हैं और रुकू की सूरत में जकात देते हैं, यही हजरात असल में मोमिनीन के वली हैं, और उनकी इताअत मोमिनीन मोमिनात पर फर्ज है। जब ये आयत उतरी तो लोगों ने पैगंबर से अर्ज किया या रसूल अल्लाह, हम जानते हैं कि हमारा वली अल्लाह है और उसका रसूल है, और ये हजरात जो नमाज को कायम रखते हैं और रुकू की सूरत में जकात देते हैं, ये जो वली हैं, ये हजरात कौन हैं? इसकी हमारे लिए आप जो है वजाहत कीजिए, इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, क्योंकि आप ही ने हमें बताया जब खुदा ने फरमाया अकीमुस्सलात, नमाज को कायम करो, तो आपने हमें सिखाया कि किस तरह नमाज कायम करना है, किस तरह अजान देना है, किस तरह खड़ा होना है, किस तरह क़याम करना है, रुकू करना है, सजदा करना है, उसके बाद सलाम फेरना है, और नमाजें कितनी है, हर नमाज में कितनी रकअतें हैं, इन तमाम की तफसील कुरान में नहीं है, तूने हमें इनकी तफसील बता दी। इसी तरह जब खुदा ने फरमाया वो आत ज़कात, ज़कात दे दो, तो उस वक्त फिर आपने हमें एक्सप्लेन किया कि ज़कात सोने पर कितनी ज़कात देनी चाहिए, चांदी पर कितनी ज़कात, ऊंटों से कितनी ज़कात, गाय की कितनी, भेड़ों की कितनी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसी तरह जितने अहकाम हैं शरीयत के, जिनको हफ्त अरकान शरीयत यानी सेवन पिलर्स ऑफ इस्लाम कहते हैं, इनकी वजाहत खुदा ने जनरल सेंस में फरमाया है, लेकिन डिटेल में खुदा ने नहीं फरमाया है क्या करना है, किस तरह करना है। इनकी वजाहत आप ही ने कर दी है, तो इसलिए आप बराही करम हमें ये भी बताइए कि खुदा जहां फरमाता है कि तुम्हारा वली खुदा है, उसका रसूल है, और वो हजरात हैं जो रुकू की सूरत में जकात देते हैं, इनकी भी शिनाख्त हमें करा दीजिए। तो इस पर आन हजरत जो है वो सोच रहे थे, क्योंकि पैगंबर को मालूम था उनकी पाक जिंदगी के दौरान कि लोगों का एटीट्यूड मौलाना अली की तरफ क्या था। मोमिनीन मोमिनात तो अपनी जान मौला को देने के लिए तैयार थे, लेकिन उनमें कुछ लोग ऐसे भी थे कि जो मौला की मुखालिफत कर रहे थे, मौला के मर्तबे से वो जल रहे थे, हसद कर रहे थे। इसलिए पैगंबर सोच रहे थे कि अभी मैं वक्ती तौर पर ये बता दूं तो फिर लोगों का एटीट्यूड क्या होगा, वो मेरे बारे में क्या कहेंगे कि पैगंबर जो है अपने चचेरेजाद भाई और अपना दामाद जो है वो हर हमेशा उनको आगे आगे करता है। तो पैगंबर को इस बात की फिक्र थी, इस फिक्र को दूर करने के लिए खुदा ने ये फरमाया वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास, खुदा तुझे लोगों से बचाने वाला है, इसलिए आप लोगों का फिक्र न कीजिए, बल्कि अपने खुदावन पर तुम भरोसा कर दीजिए, और जो पैगाम पहुंचाना है यह पैगाम पहुंचा दीजिए। तो ये आये वलायत बहुत पहले नाजिल हुई थी, उस पर पैगंबर ने अभी तक काम नहीं किया था, और आखिरी हज के बाद दुनिया से जाने के लिए पैगंबर को खुद भी मैसेज आया था कि इस आखिरी हज के बाद आप दुनिया में नहीं रहेंगे, बल्कि आप रूहानी दुनिया में जाएंगे। तो ये आखिरी हज तक पैगंबर ने इस पर अमल नहीं किया था, तो खुदा की तरफ से बहुत ही एम्फेसिस के साथ ये मैसेज आया या अय्युहर रसूल बल्लिग, रसूल पहुंचा दो जो पैगाम तुझे तुम्हारे रब की तरफ से आया है वो जरूर पहुंचा दो। वो इल्लम तफ़अल, अगर तुमने ये काम नहीं किया तमाम अल्लाह का रिसाला था, तो आपने इतने साल अप्रोक्सीमेटली कई साल तक तूने रिसालत का काम किया, ये सब जो है वो बिल्कुल नल एंड वॉइड हो जाएगा, न करने के बराबर हो जाएगा। तो जब इस तरह पैगंबर को मैसेज आ गया तो पैगंबर को फिक्र हो गई, तो पैगंबर रास्ते ही में थे, रास्ते में इसकी जो इम्पोर्टेंस है, इसकी अहमियत है, खुदा ने जिस तरह ये आयत नाजिल फरमाई, इसकी इम्पोर्टेंस की खातिर पैगंबर ने इस्तेमाल किया, बंदोबस्त किया ये मैसेज पहुंचाने के लिए खुद रास्ते ही में। नहीं तो इसका तो बहुत बंदोबस्त करना चाहिए, मदीने पहुंचकर बहुत बड़ा जश्न मनाना चाहिए जाहिर में, लेकिन वो जश्न के लिए मौका मदीने तक इंतजार करने की पैगंबर को फिक्र हुई कि खुदा का इतना सख्त ताकीदी एम्फेटिक फरमान है तो इस पर जल्दी अमल करने की कोशिश है। तो इसलिए पैगंबर ने रास्ते में देखा कि गदीर खुम, खुम एक जगह का नाम है, मक्के से मदीना जब कारवां जाते हैं तो खुम एक जगह का नाम है, और गदीर जो है वहां पर एक पोंड यानी पाली का ताला, पानी इकट्ठा होता था, वहां पर एक पोंड था, वहां पर खुद भी पानी पी सकते, जानवरों को पिला सकते थे, यानी उसमें इतनी आसाइश ये फैसिलिटी वहां जरूर थी कि रास्ते में पानी मिलता था। तो पैगंबर ने अनाउंस कराया कि यहाँ पर लोगों को इकट्ठा होना चाहिए, जमा होना चाहिए। तो जब तमाम लोग इसको गदीर खुम कहते हैं, यानी वो पोंड जो खुम के मुकाम पर है, नहीं तो खुद जगह का नाम खुम है और वहां जो पोंड है उसको गदीर कहते हैं। अब दोनों मिलकर इस्लाम में एक टेक्निकल नाम बन गया है, हिस्टोरिकल टेक्निकल नाम, इसको हम गदीर खुम, और शिया इस्लाम में इसकी बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है। तो जब यहाँ पर पैगंबर का कारवान इकट्ठा हो गया तो वहां पर पैगंबर ने ऊंटों के जो सेडल्स थे इन सब को जमा करके पैगंबर ने एक वहां पर तख्त बनवाया, आजकल के लिहाज से छोटा सा तख्त बनवाया, एक मिंबर बनवाया वहां पर। और मौलाना मुर्तजा अली का हाथ पकड़कर इस मिंबर के ऊपर चढ़ गए। इससे पहले ये नुक्ता जरूरी है, पैगंबर मिंबर पर चढ़ गई है इससे पहले कि मौला ने मिंबर पर यह अनाउंस किया कि मैं कुंतु मौलाहु फहाजा अलीयुन मौलाहु, जिसका मैं मौला हूं, जिसका मैं मास्टर हूं। मौला असल में उस जात को कहते हैं जो मोमिनीन मोमिनात के जान माल औलाद सबका मालिक होता है। पैगंबर को उनके माल, उनकी जान, उनकी औलाद पर खुद उनसे पैगंबर का ज्यादा उनके ऊपर हक होता है। मौला एक ऐसी हस्ती को कहते हैं, सिर्फ एक लिहाज से मास्टर नहीं, दीन के लिहाज से, दुनिया के लिहाज से, रूहानी लिहाज से, जिस्मानी लिहाज से उनका इख्तियार होता है, पैगंबर का इख्तियार होता है उनको ऊपर मोमिनीन मोमिनात पर, ऐसी हस्ती को मौला कहते हैं। तो पैगंबर ने फरमाया कि जिसका मैं मौला हूँ अली भी उसका मौला है। अब ये मौला का लफ्ज पैगंबर ने किस बुनियाद पर इस्तेमाल किया, इसकी बुनियाद उसी आयत में है, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैक मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लगत रिसालतहू वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास। तो इस आयत के बारे में सुन्नी आलिमों में से एक बड़ा आलिम है, उसने एक तफसीर लिखी है, तफसीर का नाम है दुर्री मंसूर। दुर मोतियों को कहते हैं, मंसूर मानी बिखरे हुए, स्केटर्ड स्केटर्ड पल्स। उसने अपनी किताब का नाम रखा है स्केटर्ड पल्स। तो इस तफसीर में जलालुद्दीन सुयूती उनका नाम है, जलालुद्दीन सुयूती अपनी तफसीर में लिखता है कि ये आयत असल में इस तरह नहीं थी पैगंबर के जमाने में, इसमें से कुछ निकाला गया है, कुछ हिस्सा इसमें से निकाला गया है। वो क्या हिस्सा है वो अपनी तफसीर में लिखता है। ये तफसीर जो है आजकल बेरूत वगैरह से छपी है, हर जगह मिली है, इजिप्ट में भी ये छप गई है, बेरूत में भी छप गई है, ये आम मिलती है आजकल। वो लिखता है कि ये आयत पैगंबर के जमाने में इस तरह पढ़ी जाती थी, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक अन्ना अलियन मौलल मुमिनीन अन्ना अलियन मौलल मुमिनीन। इंडीड अली इज द मौला ऑफ मुमिन्स। यकीनन मुतज़ाली जो है वो मुमिनीन मुमिनात के मौला है। ये जो पोर्शन है ये फिलहाल जो कुरान की एडिशन है उसके अंदर ये पोर्शन नहीं है, लेकिन जलालुद्दीन सुयूती अपनी तफसीर दुर्री मंसूर में लिखते हैं कि ये पैगंबर के जमाने में ये आयत इस तरह पढ़ी जाती थी। किस तरह पढ़ी जाती थी, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैक मिन रब्बिक अन्ना अलियन मौलल मुमिनीन। तो आपने देखा कि इसके अंदर कुरान के अंदर खुद ये मौला का लफ्ज आ गया है। अब इसी बुनियाद पर पैगंबर ने जब खिताब किया मुसलमानों से तो पैगंबर ने कुरान की इस आयत में जिस तरह मौलाना अली के लिए मौला का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है इसी तरह फरमाया। पैगंबर तो पहले से मौला थे, लेकिन पैगंबर के बाद भी तो किसी को होना चाहिए जो मोमिनीन मोमिनात की रहनुमाई करे, उनको दीन और दुनिया में किस तरह जिंदगी गुजारनी है ये रास्ता बता दे। ऐसा न हो कि पैगंबर तो अपने जमाने में नूर थे, सिराज मुनीर थे, और उसके बाद दीन इस्लाम में वो सिराज मुनीर वो रोशन चिराग जो है बुझ जाए और लोग अंधेरे में रहे, ये तो नहीं हो सकता है। तो जिस तरह पैगंबर अपने जमाने में रोशन चिराग थे, मोमिनीन मोमिनात के मौला थे, इस तरह पैगंबर के बाद भी किसी ऐसी हस्ती को होना चाहिए, और इसलिए खुदा ने फरमाया ये हस्ती और कोई नहीं ये मुर्तज़ाली है। ان علي مولى المؤمنين يقينا مرتضى مؤمنين و مؤمنات کے مولا ہے۔ اس بنیاد پر پیغمبر نے فرمایا من كنت مولاه فهذا علي مولاه، یعنی جس کا میں مولا ہوں یہ علی ہے تمہارے سامنے، जो आपका मौला है. He whose Mawla I am. Ali is his Mawla. यानी जिसका मैं मास्टर हूँ उसी का अली भी मास्टर है. तो ये बैकग्राउंड है. तो ये फरमाने के बाद फिर पैगंबर ने बहुत ही इम्पोर्टेंट दुआ की है. पैगंबर का खुतबा बहुत लंबा है, बहुत उसके अंदर असरार हैं, हकायक हैं. ये अलग खुतबा छपा है कई जगहों पर, लेकिन उनमें से जो सबसे अहम जो सेंट्रल पॉइंट है वो है मौलाना मुर्तज़ा अली की वलायत. वली और वलायत, वली मानी जिसके पास वलायत है, और वलायत के मानी जो मोमिनीन मोमिनात के जान माल और औलाद पर जो इख्तियार रखता है उसको वली कहते हैं, और जो उनके पास ऑफिस है, मर्तबा है, उसका नाम वलायत है. तो आगे मेरे बात की इन्नमा वलीयुकुमुल्लाह व रसूलुहु, इसको आयई वलायत कहते हैं. जिस तरह आप देखते हैं आयई बैअत है, आयई मवद्दत है, आयई इताअत है, इसी तरह इस आयत को आयई वलायत कहते हैं. तो कुर्बान आप सबकी पाकीज़ा रूहों से अभी पैगंबर जो दुआ फरमा रहे हैं ये आप सुन लीजिए. ये फरमाने के बाद कि मैं कुंतु मौलाहु फहाजा अलीयुन मौलाहु, उसके बाद पैगंबर ने दुआ की अल्लाहुम्मा ऐ अल्लाह. अल्लाहुम्मा आप अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन ये अल्लाह को थोड़ा सा लंबा करके पढ़ने की जरूरत है. अल्लाहुम्मा वाली मन वालाहु व आदि मन आदाहु वंसुर मन नसरहु वखजुल मन खजलहु व अजरिल हक्का माहु हैसु दार. अल्लाहुम्मा ऐ मेरे अल्लाह वाली मोहब्बत कर उस शख्स से जो अली से मोहब्बत करता है. जो अली का दोस्त है तू भी उसके साथ दोस्ती कर. व आदि और दुश्मन बन जाओ, अदू बन जाओ. अदू दुश्मन को कहते हैं, उसी से आदि ये वर्ब है. व आदि मन आदाहू, और तो उस शख्स के साथ दुश्मनी कर जो अली से दुश्मनी करता है. वंसुर मदद करो, वंसुर मन नसरहु जो अली की मदद करता है. ऐ अल्लाह तू भी उसकी मदद फरमा. वखजुल और उनको छोड़ दो, मन खजलहु जो अली को छोड़ता है. ऐ बारे खुदाया ऐ अल्लाह तू भी उसको छोड़ दे. और आखिर में जो पोर्शन है दुआ का वो तो सबका जिस्ट है, वो अजरिल हक का, और हक को उस रास्ते पर चलाओ. वो अजरिल हक का माहू है सुदार, और हक को अली के साथ साथ चलाओ. यानी जिस रास्ते पर अली चलता है उसी रास्ते पर हक भी चलता जाए. तो ये बहुत जरूरी चीज है, ये जरूर आप याद रखिए. खासकर ये पोर्शन साहिब ने आजकल कुरान की आयतें कुलियात कुरान याद करने पर जोर दिया है, और ये भी एक बहुत बड़ा कुलिया है. वह अदरिल हक का माहू है सुदार, और हक को उनके साथ साथ चलाओ फिराओ. जिस रास्ते पर अली फिरता है अली के साथ साथ हक जो है उसके पीछे पीछे चलता जाए. और ये इमामत का बहुत बड़ा उसूल है। आज हमारे कुछ नादान अपने इस्माइली भाई भी ये बातें करते हैं कि इमाम ये काम क्यों नहीं करता है, इमाम ये काम क्यों नहीं करता है, उसको ये करना चाहिए, उसको वो करना चाहिए। तो आप भी कभी कभार ऐसे लोगों से मिलते होंगे। तो ऐसे हजरात जो हैं वो दीन की जो बुनियादी बातें हैं, जो एसेंशियल और फंडामेंटल बातें हैं दीन की, ऐसी बातों से वो लोग आगाह नहीं है, बाखबर नहीं है। ये हम लोगों का काम है। खुदावंद ने हमें इतना अजीम इल्म से नवाजा है, तो हमें शुक्रगुजारी के साथ ये पाक इल्म हमारे भाई बहनों को पहुंचाना है, ताकि वो इस तरह गलत फिक्र करने की तरफ न जाइए। ऐसी गलती में कोई पड़ा है तो इसको सीधा रास्ता दिखाने की जरूरत है। तो ऐसा नहीं है कि हक पहले से कोई चीज मौजूद हो और फिर इमाम या पैगंबर उसके पीछे चले, ऐसी बात नहीं है। हक जो है वो पैगंबर की अपनी जात है, पर्सनलिटी है अपने जमाने में, और पैगंबर के बाद इमाम की जात है। इमाम के जात के साथ हक जो है वो एक हकीकत है जो मिली हुई है, कि जिस तरह पैगंबर ने फरमाया अल हक मा अल अली व अली मा अल हक, अली मा अल हक वल हक मा अली, अली जो है वो हक के साथ है और हक जो है वो अली के साथ है। यानी हक और अली कोई दो अलग अलग चीजें नहीं है, कि जिस तरह आपके पास एक गुलाब है, एक रोज है, रोज अलग और उसकी खुशबू अलग नहीं होती है। ये मिसाल बहुत अच्छी है, आप इसको जरूर याद कीजिए। रोज गुलाब का जो फूल है, ऐसा तो नहीं है कि गुलाब का फूल अलग है और उसकी खुशबू अलग है। तो गुलाब इसलिए गुलाब है कि उसकी खुशबू बहुत अच्छी है, और उस अच्छी खुशबू का वजूद कहाँ से है? गुलाब से है। इसलिए आप दोनों को अलग नहीं कर सकते हैं। इसलिए साहिब ने फरमाया है हक्शनास अज मुर्तजा शव याद हक जो बू तुराब, हक्शनास अज मुर्तजा शव, मुर्तजा से अली मुर्तजा से हक को पहचानने की कोशिश करो, या तो मुर्तजाली से हक को पहचानो, आफ्ताब अज नूर जो या नूर रा अज आफ्ताब। अगर आपको सूरज की हकीकत मालूम करनी है तो आप रोशनी की तरफ देखो, तो जो रोशनी का सोर्स है उसी का नाम सूरज है। हक्शनास अज मुर्तजा शव याज हक जो बू तुराब, आफ्ताब अज नूर जो, आफ्ताब क्या है, सूरज क्या है, उसकी आपको पहचान चाहिए। तो जब दिन निकलता है रोशनी फैलती है, रोशनी जहां से फैलती है समझ लो कि यही सूरज है, या तो दूसरे मानी में या नूर रा अज आफ्ताब। अगर नूर को पहचानने की आपको जरूरत है तो फिर आप सूरज की तरफ देखो, वहां से जो कुछ आपके सामने आ रहा है उसी का नाम नूर है। तो ये दो मिसालें नेचर से हैं, जो नेचर की मिसालें हैं बहुत ही इफेक्टिव होती हैं। तो हक और मुर्तजाली जो है, मुर्तजाली जहां है वो जो फरमाता है, वो जो करता है, उसी का नाम हक है। और अगर हक को देखना है कि हक का सोर्स क्या है, कि दुनिया में हर ललू पंजू से हक का काम नहीं होता है, हक के लिए दुनिया में एक इंसानी कामिल की जरूरत होती है, جو خدا اپنے علم کے ساتھ اپنے نور کے ساتھ دنیا والوں کے لیے بھیجتا ہے اس کا نام حق ہے. تو حق اور مرتضی علی, یعنی مرتضی علی مطلب زمانے کا امام جو علی زمان ہے, اگر آپ حق کیا ہے یہ جاننا چاہتے ہیں تو زمانے کے امام کی طرف دیکھو, وہ کیا فرماتا ہے, وہ کیا کرتا ہے, کس طرح لوگوں کی ہدایت کرتا ہے, تو اسی سے آپ کو حق کی پہچان ہوگی. تو قربان جائیں تو اس لیے پیغمبر نے فرمایا دعا کی آخر میں کہ باری خدایا وَأَدْرِ الْحَقَّ مَعَهُ حَيْثُ دار, اور حق کو علی کے ساتھ ساتھ پھراتے جاؤ, اور جس راستے میں علی چلتا ہے حق خود بخود علی کے ساتھ چلتا جائے گا, حق علی سے جدا ہو کر اس کا کوئی وجود نہیں ہے. حق علی سے جدا ہو کر حق کا کوئی وجود نہیں ہے, اس کا کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے. تو یہ بہت بڑا پرنسپل ہے امام شناسی کے لیے, اور امام شناسی سے آگے بڑھ کر قائم شناسی کے لیے. تو جو ہمارے بھائی بہن ان اصولوں کو نہیں جانتے ہیں ان کو سکھانے کی ضرورت ہے کہ آپ نے اگر امام کو تسلیم کیا ہے, بیعت کیا ہے, تو کس بنیاد پر آپ نے بیعت کیا ہے. یہ نہیں کہ آپ امام کو سکھا دیں, بلکہ اس لیے ہم نے بیعت کی ہے کہ زمانے کے امام ہمیں کیا سکھاتے ہیں, ہمیں کیا تعلیم دیتے ہیں. تو الغرض میں وہ بات کرتا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہی جلال الدین سیوطی جس کا میں نے ابھی ابھی نام لیا, اور جس نے یہ آیت کے بارے میں جو ہم دعا کے تیسرے حصے میں پڑھتے ہیں اس کے بارے میں لکھتا ہے کہ یہ فریز جو ہے, یہ جملہ جو ہے نکالا گیا ہے, ان علی مولا المؤمنین یہ نکالا گیا ہے. یہی شخص اس آیت کے بارے میں بھی کہتا ہے کہ جب پیغمبر نے غدیر خم کے مقام پر مولانا مرتضی علی کی ولایت کو آشکار کیا برملا پبلکلی, لوگوں کو بتایا کہ ان کے بعد اسلام خالی کھلی نہیں رہے گا, اندھیرے میں نہیں رہے گا, بلکہ جس طرح پیغمبر اپنے زمانے میں سراج منیر تھے, روشنی دینے والے چراغ تھے, اسی طرح ان کے بعد بھی دین اسلام خالی رہنے والا نہیں ہے, ہدایت سے خالی رہنے والا نہیں ہے, بلکہ ایک زندہ حادی کا وجود ضروری ہے جس کو الحاضر والناظر کہتے ہیں, کہ جو ہمیشہ حاضر بھی ہے اپنی نورانیت میں, اور وہ ہمارے اعمال کو دیکھتا بھی ہے, نہ صرف ظاہری اعمال کو دیکھتا ہے بلکہ وہ ہمارے دل میں ہمارے دماغ میں کیا گزرتا ہے ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے قابل ہے. ایک ایسا حادی برحق دنیا میں ہونا ضروری ہے, اس کے بغیر اسلام نامکمل رہے گا, انکمپلیٹ یا امپرفیکٹ رہے گا, اور خدا کی جو نعمتیں ہیں وہ انکمپلیٹ رہ جائیں گی. تو پیغمبر نے ابھی ابھی ایک پودا لگایا ہے, ایک پلانٹ لگایا ہے, اس کو پانی دینے والا کوئی نہیں ہے, اس کو بیت بکریاں کبھی اس کو کھا جاتی ہیں, یا اس کا جو چھلکا ہے وہ اس کو جو ہے اتار کر کھا جاتی ہیں, تو وہ جو پلانٹ جو ہے وہ ڈرائی ہو جاتا ہے, خشک ہو جاتا ہے. اسلام کی حالت ایسے ہونے والی نہیں تھی, تو اس لیے پیغمبر نے یہ بشارت دی کہ آج میں نے اپنا جانشین قائم کیا, اور جس طرح میں نور کا سورس رہا ہوں, میرے بعد مرتضی علی اور اس کی اولاد جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے نور کا سورس رکھیں گے. تو اس لیے یہ اناؤنس جب پیغمبر نے کیا تو اس کی اہمیت کے پیش نظر یہ امپورٹنٹ یہ موقع یہ اوکیشن کتنا امپورٹنٹ تھا اس کے بارے میں خدا نے یہ آیت بھیج دی. اس کا ذکر جلال الدین سیوطی نے اسی تفسیر میں جس کا میں نے ذکر کیا اور جس کا نام ہے درری منصور, وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب غدیر قم کے مقام پر پیغمبر نے مولانا مرتضی علی کی ولایت کا اعلان کیا. تو اس کے بعد یہ آیت اسی جگہ پر نازل ہوئی کہ خدا نے فرمایا کہ جس طرح میں نے پیغمبر کے ساتھ اپنی رحمت بھیجی تھی تنزیل کی صورت میں, ابھی پیغمبر نے جو تنزیل لائی ہے اس کی تاویل بتانے کے لیے پیغمبر نے میرے حکم سے اپنا جانشین مقرر کیا. اب اسلام میں تنزیل اور تاویل دونوں کا کام جو ہے وہ مکمل ہو گیا. تنزیل کا کام پیغمبر نے کیا, اب تاویل کا کام جو گریجولی ہونے والا ہے مرتضی علی اور اس کی آل جو ہے یہ کام کرتے جائیں گے کرتے 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 یہاں تک کہ قائم القیامت کا ظہور ہو. تو مرتضی علی سے یہ تاویل کا کام شروع ہو کر قائم القیامت تک یہ کام جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا, جس کے لیے صاحب نے تاویل محضی مجرد فرمایا کہ یہ تاویل جو ہوگی یہ جو الگریز ہیں پیرابلز ہیں مثالیں جو ہیں مثالوں کو ہٹا کر تو حضرت قائم کے زمانے میں آپ کو کشفی تاویل کشفی اور نورانی تاویل مل جائے گی. تو یہ اتنا عظیم موقع تھا, اس موقع پر خدا نے فرمایا الیوم آج کے دن, یعنی غدیر قم کے مقام پر جو پیغمبر نے اعلان کیا اس دن الیوم اکملت لکم دینکم, میں نے تمہارے دین کو کامل بنا دیا, اس کے اندر کوئی امپرفیکشن نہیں ہے, ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہے جب تک امام دنیا میں حاضر اور ناظر ہے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي, اور میں نے اپنی فیور, خدا کی سب سے عظیم فیور کیا ہے؟ اس کی عظیم فیور اس کی ہدایت ہے, باقی سب چیزیں ادھر ادھر ہونے والی ہے لیکن خداوندی ہدایت جن کو مل رہی ہے اس سے مومنین و مومنات کو اس دنیا میں فائدہ ہے اور اس دنیا کے ساتھ آخرت میں اس سے بھی زیادہ اس کے لیے فائدے ہیں. تو اس لیے فرماتے ہیں تو میں نے تمہارے دین کو پرفیکٹ کیا اور میں نے اپنی نعمت میرے جو فیور جو ہے وہ تمہارے لیے میں نے کمپلیٹ کر دیے, تمام کر دیے, پورے کر دیے, اپنے پاس اب کوئی چیز نہیں رکھا ہے. اور ایسے دین کا نام اسلام رکھنے کے لیے میں بہت ہی راضی ہوں. اور اسلام کے معنی ہے سبمیشن. آپ کو معلوم ہوگا کہ مولا نے یہ سبمیشن جو ہے خصوصاً مجھے یاد ہے کہ ٹورنٹو کا ایک فرمان ہے اس کے اندر مولا یہ سبمیشن کا لفظ استعمال کرتے ہیں. آپ نے امام کو ایک مرتبہ تسلیم کیا تو اس کو سبمٹ کیے بغیر کوئی مرید کس طرح ہو سکتا ہے, کوئی مولا کا بندہ کس طرح ہو سکتا ہے. تو اس لیے یہ آیت جو ہے بہت ہی ضروری ہے, بہت ہی اس کے اندر معانی ہے اور اس کا کچھ حصہ بیان کرنے کی ضرورت ہے. میرے خیال میں ابھی ٹائم جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے اور وہ چیزیں میں ابھی بیان کرنے کی کوشش کروں تو شاید مکمل نہیں ہوگا. تو انشاءاللہ مولا کا حکم ہوا آپ سب کی دعائیں شامل حال رہیں तो इंशाल्लाह जो आने वाली क्लास होगी उसमें ये बाकी हिस्से को इंशाल्लाह मौला की ताईद और आप सबकी दुआओं से मैं इसको कुछ वाजा करने की कोशिश करूंगा। और उस वक्त तक आपने ये जो कुछ सुना इसमें मजीद किसी चीज की वजाहत की जरूरत हो तो पहले से मुझे कोई ईमेल के जरिए से आप लोग बता दीजिए ताकि मैं उस लेक्चर के अंदर इन बातों की भी वजाहत की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है इमाम शिनासी के लिए, कायम शिनासी के लिए। इमाम का मर्तबा क्या है, मोमिन और इमाम का आपस में क्या रिश्ता है, सबमिशन के क्या मानी है, इन तमाम बातों के बारे में ये आयत और उसके साथ जो दूसरी आयतें जो मैंने बयान की है, तो ये सब आयतें जो है एक तो आयत वलायत है और दूसरी आयत तबलीग है। या अय्युहर रसूल बल्लिग, इस आयत को आयत तबलीग कहते हैं। इन्नमा वलीयुकुम अल्लाह व रसूलुहू, ये आयत वलायत है। और ये दुआ में जो पढ़ते हैं इसको हम आयत तबलीग कहते हैं। और ये जो आयत आखिरी आयत है, अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, इसका टेक्निकल नाम है इकमालुद्दीन। इकमाल IKMA, ए के ऊपर शापो फिर L, इकमाल फिर U फिर DDIN, I के ऊपर शापो इकमालुद्दीन, परफेक्शन ऑफ रिलीजन। वा इत्मामुन निअमा, IKMAM, आखिरी ए पर शापो फिर एम के बाद UN, इत्मामुन फिर हाइफ़न निअमा NIM फिर अपोस्ट्रोफी AH, निअमा निकमत यानी इकमालुद्दीन व इतमामुन निअमा। यानी इस आयत में इस हकीकत की तरफ इशारा है कि दीन मुकम्मल होने और खुदा की निअमत कंप्लीट होने के क्या मानी है, तो किस सूरत में दीन मुकम्मल हो गया और किस सूरत में खुदा की नेमत जो है वो कंप्लीट हो गई। कुर्बान आप सबकी पाजीदार रूहों से मौला खुदावन हम सबको हिम्मत दे, यारी दे, दस्तगिरी फरमाइए, हकायक को समझने के लिए मौला चश्मे बसीरत और ताईद से सबको नवाजे। और बहुत बहुत शुक्रगुजारी, तो आप सब ने बोलने के लिए मौका दिया और इंशाल्लाह बाकी हिस्सा मौला को हुक्म हुआ उसकी ताईद आपकी दुआ शामिल हाल रही तो बाकी उसमें अर्ज करने की कोशिश की जाएगी। या अली मदद कुर्बान, या अली।